आप सुन रहे हैं टॉल्स्टॉय का अजीम नावल आना करीना पार्ट थ्री। पेशकश सैयद इरफान अली। मुफ्त डाउनलोड करें www.server555.com। आना ये महसूस कर चुकी थी कि वरोंस्की उसमें दिलचस्पी ले रहा है और दूसरे दिन मास्को से अपने घर रवाना हो गई। डॉली उसके जाने पर बेहद अफसरदा थी और सुलह करवाने पर उसकी शुक्रगुजार भी। आना रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। बाहर बर्फ का शदीद तूफान था। एक स्टेशन पर जब वो ताज़ा हवा के लिए रेल से बाहर निकली तो वहां उसके इस्तकबाल के लिए वरोंस्की मौजूद था। उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और जहां तुम होगी मुझे वहां मौजूद पाओगी। अगरचे ये अल्फाज आना को बेहद अच्छे लगे मगर उसने गुस्से का इजहार किया और पीटर्सबर्ग पहुंचने तक मुसलसल यही बात सोचती रही। स्टेशन पर उसके शोहर करिनिन ने उसका इस्तकबाल किया मगर अब आना को अपने शोहर में खराबियां नजर आ रही थीं और दिल में ये एहसास कि वो अपने शोहर से बेवफाई कर रही है। जब उसके बच्चे सिरियोजा ने उसका इस्तकबाल किया तो उसे महसूस हुआ कि बच्चे के ख्याल उससे ज्यादा खूबसूरत थे। जल्द ही वो दोबारा अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामों में मसरूफ हो गई। उसके शोहर करीनिन की जिंदगी का एक एक लम्हा मसरूफियत से भरपूर था। आना ने उसे अपने मास्को के सफर के बारे में बताया मगर वरोंस्की के बारे में बताने से एतराज किया। जब उसके शोहर ने स्टीवा के गैर औरत से ताल्लुकात को नापसंद किया तो आना ने सोचा कि उसका शोहर किस कदर नेक और अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ वरोंस्की का ख्याल था कि वो आना से अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएगा। किटी बीमार हो चुकी थी और मुख्तलिफ डॉक्टरों के इलाज के बावजूद सेहतमंद नहीं हो रही थी। एक डॉक्टर के मशवरे के बाद उसे आबो हवा की तब्दीली के लिए मुल्क से बाहर ले जाने का सोचा गया। घर वालों का ख्याल था कि किटी की सेहत की खराबी की वजह वरोंस्की की बेरुखी से उसका दिल टूट जाना था और ये भी कि वो उसे बीमार करने में बराबर के शरीक हैं जिनकी वजह से किटी ने लेविन से शादी से इनकार किया और वरोंस्की ने खुद ही उसे छोड़ दिया। अपनी बहन डॉली से किटी ने कहा कि घर वाले हर हालत में उसकी शादी के ख्वाहिशमंद हैं और उसे जलील कर रहे हैं और बाजार में रखी हुई चीज की तरह पेश कर रहे हैं और यही उसकी बीमारी की वजह भी है। डॉली के अपने हालात बहुत खराब हो रहे थे और दोबारा शोहर से लड़ाई हो चुकी थी। किटी दोबारा उसके घर गई और उसके बच्चों की देखभाल की मगर 6 हफ्ते बाद भी सेहत बदस्तूर खराब रहने की वजह से तब्दीली आबो हवा की खातिर उसे दूसरे मुल्क जाना ही पड़ा। आना ने जो दोस्त बना रखे थे वो 3 हिस्सों में तकसीम थे। एक उन आला फीसद पर मुश्तमिल था जो कि उसके शोहर के दोस्त थे। दूसरा हलका जिसमें आना कम जाती थी संजीदा नेक और पढ़े लिखे मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था और तीसरा तबका फैशन करने वाला और डांस पार्टियां मुनक्किद करने वाला था। आना और वरोंस्की अक्सर इसी तबके में एक दूसरे से पार्टियों में मुलाकात करते। पहले पहल तो उसे वरोंस्की का साथ अच्छा ना लगता मगर अब उसकी जुदाई में वो बेचैन नजर आती। उसके शोहर करीने ने यह बात महसूस की और सोचने लगा कि यह मामूली मसला नहीं है। शायद अब उसकी बीवी उसके बजाय किसी गैर मर्द से मोहब्बत कर रही है। वो हसद महसूस कर रहा था। एक आला अफसर जिसने तमाम उम्र सरकारी मामला सुलझाए उसकी जिंदगी का एक अहम मसला अब उसके सामने था। उसने वो बातें सोची जो वो आना से करेगा। उसने आना को एहसास दिलाया कि खुदा ने उसे जो रास्ता बताया है उस पर चले और बच्चे के बारे में भी सोचे और ऐसी बातों से परहेज करे जिनसे लोगों को बातें बनाने और हंसने का मौका मिले। आना ने बात को टालने की कोशिश की। उसके ध्यान में अब सिर्फ वरोंस्की ही था। आना और उसका शोहर ऊपर से और दुनिया को दिखाने के लिए पुरानी तरह मिलते रहे मगर अंदर से उनकी जिंदगियां बिल्कुल तब्दील हो चुकी थीं। उसके शोहर को बहुत अकलमंद होने के बावजूद इल्म ना था कि अपनी बीवी को गलत रास्ते पर जाने से किस तरह रोके। वो अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करता था। आना शर्म मोहब्बत जिल्लत गुनाह शर्मसारी के मिले जुले एहसास में वरोंस्की से बहुत करीब हो गई और उसे कहा कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। उसकी हालत दो आदमियों के सोचों के दरमियान बेहद ख़राब थी। वो ख्वाब में देखती कि करिनिन और व्रॉन्स्की दोनों ही उसके शोहर हैं और दोनों शोहर उससे खुश हैं और सब कुछ ठीक है, मगर जागने पर यह भयानक हकीकत उसे बेहद खौफजदा कर देती। लेविन 3 माह गुजरने के बावजूद अब तक किटी की शादी के इनकार की शर्मिंदगी को भुला नहीं सका था। वो शादी का मुकम्मल इरादा कर चुका था, मगर किटी के इनकार ने सब कुछ हिला कर रख दिया था। मगर बहार के मौसम की इब्तिदा के साथ ही ज्यादा कामों में मसरूफियत की वजह से और इस मौसम की दिलकशी की वजह से वो माजी की शर्मिंदगी भूलने लगा। भाई निकोलाई की सेहत की खराबी का सुनकर वो उससे मिलने मास्को गया, उसे इलाज के लिए रकम दी और मुल्क से बाहर जाने का मशवरा भी, ताकि माहौल की तब्दीली से सेहत बेहतर हो सके। बाहर के मौसम में मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, मुलाज़मीन उसकी मर्ज़ी से कम काम कर रहे थे, वो मौसम और काम दोनों से मसरूर था। इसी दौरान स्टीवा भी वहाँ आ गया। वो अपनी बीवी की जायदाद में से एक बाग फरोख करने वहाँ आया था और शिकार खेलने का भी इरादा था। उसने दौरान गुफ्तगु कहा कि औरत को समझना बेहद मुश्किल है। उन्होंने शिकार खेला। लेविन के पूछने पर स्टीवा ने बताया कि किटी इलाज की खातिर मुल्क से बाहर है और उसने शादी ना करने का फैसला किया है। लेविन के लिए ये खबर बहुत अहम थी। उसने स्टीवा से तमाम तफसीलात मालूम की। जंगल के सौदे के सिलसिले में उसने नाराजगी का इजहार किया कि स्टीवा ये बहुत कम कीमत पर फरोख कर रहा है, जबकि उसकी मालियत बहुत ज़्यादा थी। स्टीवा ने जंगल फरोख कर दिया और इस सौदे पर खुश था। लेविन किटी के बारे में खबर सुनकर बेहद परेशान था। व्रॉन्स्की की माँ, जिसकी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की आला खानदान में शादी हो, अब बेटे के आना से इश्क की इतलात पर बहुत परेशान थी। व्रॉन्स्की, जिससे अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ मशागिल जिनमें सरे फहरिस्त घोड़ों की दौड़ था, बेहद पसंद थे। उसने इस सिलसिले में एक नई शानदार घोड़ी खरीदी थी और रेस के दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। व्रॉन्स्की ने रेस से पहले आना से मिलने का फैसला किया और उसके घर गया। अलबत्ता उसने आना के शोहर और बेटे से मिलने से गुरेज किया। बेटा उसको नफरत से देखता था, क्योंकि वो उसके अपनी माँ के साथ रिश्ते को समझने में हमेशा नाकाम रहा था। आना घर में अकेली थी। उसने व्रॉन्स्की का इस्तकबाल किया, मगर ये अहम बात बताई कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। व्रॉन्स्की ने फैसला कुन लहजे में उससे कहा कि वो अब अपने शोहर से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करके व्रॉन्स्की के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करे, मगर आना को इल्म था कि बेटे और शोहर की मौजूदगी में ये फैसला इतना आसान नहीं था। व्रॉन्स्की घोड़ों की दौड़ में शामिल था। वो सबसे आगे था और उसे जीत की मुकम्मल उम्मीद थी। आना और उसका शोहर करिनिन भी ये दौड़ देखने वालों में शामिल थे। करिनिन देख रहा था कि उसकी बीवी की निगाहें मुसलसल व्रॉन्स्की का ताकुब कर रही हैं। आना ने भी ये बात महसूस कर ली, मगर उसे अपने शोहर की अब कोई परवाह नहीं थी। अगरचे व्रॉन्स्की को उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा, मगर उसकी अपनी गलती से घोड़ी नीचे गिर पड़ी और वो रेस हार गया। यह उसकी ज़िंदगी का पहला तल्ख तजर्बा था जो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ था। आना ने व्रॉन्स्की को गिरते हुए देखा और उसकी चीख और बात की हरकत से वाजा हो रहा था कि उसे व्रॉन्स्की का कितना ख्याल है। उसने तमाम लोगों की मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया और रोने लगी और अपने शोहर की किसी बात पर ध्यान ना दिया। वापसी पर शोहर ने उसे कहा कि उसे लोगों के सामने एहतियात करनी चाहिए और इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, मगर आना को सिर्फ व्रॉन्स्की की ही फिक्र थी कि कहीं वो ज़्यादा ज़ख्मी ना हो गया हो। आना को इत्तला मिल गई कि व्रॉन्स्की खैरियत से है और अब उसे रात का इंतज़ार था जब वो अपने महबूब से मुलाकात कर सके। किटी सेहतयाबी के लिए अपने ख़ानदान के साथ जर्मनी के खूबसूरत इलाके में मौजूद थी। किटी की बहुत से लोगों से दोस्ती हुई, जिनमें एक रूसी लड़की भी शामिल थी जो सब की तीमारदारी करती। वरिंका नामी इस लड़की का असर किटी ने बहुत ज़्यादा लिया कि उसे भी इसी तरह लोगों का ध्यान रखना चाहिए। लेविन का बीमार भाई अपनी बीवी के साथ वहाँ पर मौजूद था, मगर किटी ने महसूस किया कि वो उससे नफरत करता है और किटी की माँ ने भी कहा कि वो बुरे इंसान है। वॉरिंका को मैडम स्टॉहिल नाम की औरत ने पाला था और अपनी अच्छी और मिलनसार आदत की वजह से वो किटी की दोस्त बन चुकी थी। वोरिंका ने उसे बताया कि उसने एक आदमी से मोहब्बत की, मगर अपनी माँ के कहने पर उसने दूसरी लड़की से शादी की, क्योंकि वो अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था। किटी ने भी दूसरे लोगों की मदद और तीमारदारी करना शुरू की, मगर एक मरीज की बीवी ने किटी को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया और कोशिश की कि किटी उसके शोहर के करीब ना आए। किटी का बाप भी वहां आ गया और सब लोगों से अच्छे तरीके से मिला, मगर जल्द ही वापसी के वक्त किटी वोरिंका के उन नेकी के ख्यालात को भुला चुकी थी जो चंद दिन पहले उस पर अपना कब्जा जमा चुके थे। किटी की सेहत अब बेहतर थी और वह वापस मास्को जा रही थी। लेविन का लिखारी, राइटर और फिलोसोफर भाई सिरगे उसके पास गर्मियां गुजारने आया हुआ था। उसके भाई का ख्याल था कि देही इलाका जहनी सुकून और छुट्टियां गुजारने की जगह है, जबकि लेविन के लिए वो काम की जगह थी। वो दूसरे किसानों के साथ काम करना पसंद करता था, उनके साथ खाना खाता और उनसे उनकी जिंदगियों के बारे में गुफ्तगू करता। काम खत्म करने के बाद वो अपने भाई के साथ वक्त गुजारता और उससे गुफ्तगू करता। स्टीवा ने अपनी बीवी के लिए देहात में रहने के लिए एक मकान को रहने के काबिल किया जो उसकी बीवी की ही मलकियत था। स्टीवा खुद तो शाहाना जिंदगी गुजार रहा था, मगर उसने सोचा कि बीवी और बच्चों के खराजात इस तरह बच जाएंगे, जबकि उसकी सादा तबीयत बीवी, अपने बच्चों की सेहत और किटी की अपने मुल्क वापसी पर उसके साथ रहने के लिए देहात जाना चाहती थी। ये मकान लेविन की जायदाद से नज़दीक ही था। लेविन को स्टीवा का खत मिला कि वो उसकी बीवी डॉली से मिले और उसकी देखभाल करे। चुनाचे एक दिन जब डॉली चर्च से वापस जा रही थी तो लेविन उससे मुलाकात के लिए आ पहुंचा। उसकी अच्छी आदत और मिलनसारी की वजह से डॉली और उसके बच्चे उससे अच्छे तरीके से मिलते थे। डॉली ने लेविन से किटी के मुतालिक गुफ्तगू करनी चाही, मगर उसने बात टालने की कोशिश की। आखिर लेविन ने कहा कि किटी ने उसकी शादी की दरख्वास्त ठुकरा दी थी। डॉली ने कहा कि उसकी किटी को काफी सजा मिल चुकी है और जब किटी वहां आए तो लेविन को उससे मुलाकात करनी चाहिए, जो पहले से बहुत बेहतर है। लेविन ने किटी के शादी से इनकार को याद किया और उसने सोचा कि वो उससे मुलाकात नहीं करेगा। डॉली के बच्चे आपस में लड़ रहे थे और लेविन को यह सब कुछ बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेविन ने जब किसान मियाँ बीवी को बहुत खुश एक दूसरे की मदद करते देखा तो उसे भी एहसास हुआ कि उसकी बीवी भी अगर किसान ही हो तो बेहतरीन साथी साबित हो सकेगी। रात की सोच के बाद सुबह उसने घोड़ा गाड़ी में किटी को बैठे देखा और महसूस किया कि वो किटी के बगैर नहीं रह सकता। किटी को देखने के बाद उसका किसी किसान लड़की से शादी का इरादा खत्म हो चुका था। आना के शोहर करिनिन का जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बन चुका था। वो सोच रहा था कि उसे अपनी बदकिरदार बीवी के साथ क्या करना चाहिए, तलाक? मगर इसमें बीवी का गुनाह जिस तरह साबित करना पड़ेगा वो बेहद बदनामी का बाइस होगा। लड़ाई को वो सख्त नापसंद करता था, चुनाचे उसने फैसला किया कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि आना दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करे और वरोंस्की से ताल्लुकात खत्म करे। वो आना को खत लिखता है कि उसे अपने बेटे और अपने लिए वापस लौट आना चाहिए। खत लिखने के बाद वो दोबारा अपनी सरकारी मसरूफियात में मशगूल हो जाता है। आना अपने ताल्लुकात के बारे में अपने शोहर को बता चुकी थी और इत्मीनान महसूस कर रही थी कि उसे धोखा नहीं दे रही, मगर वो अपने बेटे के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। वो मास्को जाने का इरादा करती है, उसे अपने शोहर का खत मिलता है। वो सोच रही है कि शायद धमकी है कि अगर वो जल्द फैसला ना करेगी तो बेटा उससे छीन लिया जाएगा। वो मास्को जाने का इरादा मुलतवी कर देती है और व्रोंस्की को पैगाम भिजवाती है कि वो जल्द अज जल्द उससे मुलाकात करे। व्रोंस्की को रुपए पैसों की शदीद किल्लत थी, क्योंकि आना से मुआशके के बाद माँ की तरफ से माली इमदाद बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब वो मकरूज भी था। बाप की जायदाद का बेशतर हिस्सा वो अपने शादीशुदा भाई को दे रहा था। दूसरी तरफ फौज में उसे 2 साल पहले जो तरक्की दी गई थी वो उसने लेने से इनकार कर दिया था, और इसका साथ ही वो तरक्की कबूल करके अब उससे बहुत आगे निकल चुका था। उसे लोग ये भी कहने लगे थे कि औरत इंसान की कामयाबी के रास्ते की दीवार होती है। वरोंस्की को आना का ख़त मिलता है और वो उससे मुलाकात करने जाता है। आना उसे अपने शोहर के ख़त के बारे में बताती है। वरोंस्की उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए जल्द ही कुछ करेगा। आना घर जाकर शोहर को कहती है कि वो अब तक वरोंस्की को पसंद करती है। शोहर कहता है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी बदनामी और वरोंस्की की इस घर में मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दोनों में शदीद तलखी है। लेविन को डॉली का खत मिला जिसमें किटी के लिए घोड़े की जैन की फरमाइश की गई है। लेविन ने वो तो भिजवा दी, मगर वो फैसला ना कर सका कि खत का क्या जवाब दे। वो परेशान था कि कहीं दोबारा पहले जैसे हालात पैदा ना हो जाए और उसे शर्मिंदगी दोबारा उठानी ना पड़े। अगरचे वो अब भी किटी को बेहद पसंद करता था। वो मशवरा लेने की खातिर अपने दोस्त के घर गया जो अपनी बीवी की बहन के साथ उसकी शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर लेविन उसे नापसंद करता था और उससे शादी का तसव्वुर भी ना कर सकता था। लेविन ने फार्म के खराब हालात के बारे में चंद फैसले किए और उन पर फौरी अमल के लिए वापस अपने घर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि सब किसानों को मुनाफे में शरीक किया जाए, मगर हर कोई काम में बेहद मसरूफ था। कुछ लोगों ने उसकी सोच को शक के साथ देखा, मगर फिर लोगों ने उसकी सोच को कबूल करना शुरू कर दिया। उसका बीमार भाई भी उसके पास आ गया जो बेहद कमजोर और बीमार हो चुका था और अपनी बीवी को छोड़ चुका था जो उसे बोझ समझ रही थी। रात को अपने बीमार भाई की खांसी ने लेविन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब हर चीज का अख्तिताम मौत है तो इतनी भाग दौड़ क्यों। जब उसके भाई ने इन नजरियात का सुना जो वो अमली जामा पहनाने जा रहा था, तो उसने इश्तराकियत और कम्युनिस्ट के नजरियात को नापसंद किया। मगर लेविन की सोच थी कि वो इश्तराकियत और कदीम निजाम को एक साथ लेकर चलेगा। उसका भाई गुस्से में उसके पास से चला गया, अगरचे लेविन ने माफी भी मांगी मगर वो ना रुका। चंद दिन बाद लेविन भी दूसरे मुल्क जा रहा था। करेनिन दुनिया के सामने मजाक नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो आना से इस तरह मिलता जैसे सब ठीक है, मगर अंदर से उनके दरमियान सख्त इख्तलाफात थे। व्रोंस्की आना से उसके घर में मिलने से इज्तनाब करता, मगर बाहर उनकी मुलाकातें जारी थीं। व्रोंस्की को जिम्मेदारी सौंपी गई कि एक गैर मुल्की शहजादे को मुख्तलिफ मकामात की सैर कराए। व्रोंस्की तो अपनी अदात में खुद शहजादा था और तमाम हफ्ता उसने बेजारी के साथ इस शहजादे को बर्दाश्त किया जिसने तमाम दुनिया की सैर का अजम कर रखा था, और उसके जाने के बाद सुकून की सांस ली। उसे आना का पैगाम मिला कि आज शाम उससे मिलो क्योंकि शोहर घर से बाहर होगा। मगर जब वो आना के घर पहुंचा तो करीनिन बाहर जा रहा था जिसने सर्द मोहरी से व्रोंस्की से मुलाकात की और चला गया। आना उससे मोहब्बत से मिली और अपनी सोचों में उसे दुनिया का सबसे बढ़कर इंसान करार दिया। उसे कोई परवाह ना थी कि उसके शोहर ने व्रोंस्की को अपने घर में देख लिया है, बल्कि उसे गुस्सा था कि उसके शोहर ने उसकी बेवफाई के बावजूद उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि एक मशीन सरकारी मशीन की तरह अब भी उससे मोहब्बत का दावा करता है। उसने व्रोंस्की को कहा कि शायद अब मैं मर जाऊं क्योंकि मैंने ख्वाब में अपने आप को मरते हुए देखा है। व्रोंस्की ने उसे ऐसी बातें करने से मना किया, मगर वो खुद भी अपने बारे में ऐसा ही ख्वाब देख चुका था। उसने कहा कि वो दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। करीनिन को शदीद गुस्सा था कि उसकी हिदायत के बावजूद व्रोंस्की ने उसके घर में उसकी बीवी से मुलाकात की। घर वापसी के बाद वो तमाम रात जागता रहा और बीवी को तलाक देने के बारे में सोचता रहा। सुबह आना के कमरे में जाकर गुस्से से उससे उसके मोहब्बत नामे हासिल करने की कोशिश की और उसे बहुत बुरा भला कहा, और जाते हुए आखिरी अल्फाज कहे कि वो तलाक के लिए वकील से मिल रहा है जबकि उसे उसका बेटा नहीं दिया जाएगा। अब आना रो रही थी कि मेरे बेटे को मेरे पास रहने दो। करीनिन अपने वकील से मिला जिसने उसे बताया कि तलाक के लिए औरत के ऊपर गलत इल्जामात लगाना पड़ते हैं। मजहब के असूल और जवाबित की वजह से तलाक मुश्किल नजर आ रही थी और वकील की ख्वाहिश थी कि अगर उस पर मुकम्मल भरोसा कर लिया जाए तो काम बन सकता है, वरना मुश्किल है। सरकारी कामों में करीनिन कामयाबी हासिल कर रहा था। उसकी मुलाकात आना के भाई स्टीवा से हुई जो डॉली के साथ रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। डॉली और स्टीवा उससे अच्छे तरीके से मिले, मगर करीनिन उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और आना के बारे में जानने पर उसने बहुत बुरा मुंह बनाकर जवाब दिया, हाँ वो ठीक है। स्टीवा ने मास्को में लेविन से मुलाकात की जो बैरून मुल्क से वापस आ चुका था। वो करिनिन से मिला और महसूस कर लिया कि उसके आना से ताल्लुकात शदीद ख़राब हैं। एक ऐसे आला अफसर से मुलाकात की जो बहुत सख्त मशहूर था, और एक खूबसूरत लड़की से भी मुलाकात की और उसे तोहफा देकर उसे अपना एहसान मंद कर लिया। लेवी ने उसे अपने इंग्लिस्तान, फ्रांस और जर्मनी वगैरह के सफ़र के बारे में बताया। जब स्टीवा को मालूम हुआ कि करेनिन वकील से मिल रहा है कि आना को तलाक दे, तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि वो कोई भी फैसला करने से पहले उसके घर आए और उसकी बीवी से भी मिले, जहां दूसरे मेहमान भी मौजूद होंगे। करेनिन शाम को वहां आया। वहां लेविन और किटी भी मौजूद थे। लेविन किटी से बहुत अच्छे तरीके से मिला, जो बहुत शर्मिंदा और घबराई हुई थी। लेविन बहुत खुश था क्योंकि दावत बहुत अच्छी थी, और करेनिन भी अपने ख़राब हालात के बावजूद खुश नज़र आ रहा था। औरतों की तालीम हासिल करने के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी कि क्या औरत अगर तालीम हासिल करे तो वो आज़ादी की ख्वाहिश कर देगी। लेविन और डॉली इन तमाम बातों से दूर एक दूसरे से दोबारा मिलने पर बेहद मसरूर थे। डॉली ने करिनिन से दोबारा आना के बारे में पूछा, और उसके किसी गैर मर्द से ताल्लुकात का सुनकर और ये जानकर कि एक 8 साल बच्चे की माँ अब अपनी पुरानी ज़िंदगी पर पछता रही है, और ये कि अब तो वो अपने बेटे के बारे में भी शक में मुब्तला है कि क्या वो वाकई उसी का बेटा है, डॉली बेहद परेशान हुई। और इस बात का यकीन आने पर उसने रोते हुए कहा कि तलाक से आना की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, उसे तलाक देने में जल्दी ना करो। करीने ने जवाब दिया कि मैं उस औरत को कभी माफ़ नहीं कर सकता जिसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है, और वहाँ से चला गया। लेविन ने किटी से दोबारा शादी की बात छेड़ी और वो शादी के लिए मान गई। किटी ने माजी की बातों पर माफ़ी मांगी। लेविन ने जवाब दिया, किस चीज़ की माफ़ी, कुछ भी नहीं हुआ। किटी की मोहब्बत का यकीन होने के बाद लेविन ने उसके वालदैन से शादी की बात करने का फ़ैसला किया। उसे अब अकेले रहने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, नींद उसे बहुत दूर थी। वो किटी के घर पहुंच गया, जहां किटी की हालत भी उस जैसी ही थी और वो खुद भी रात भर जागती रही थी। किटी के वालदैन ने बहुत खुश होकर शादी की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो खुद भी यही चाहते थे, लेविन की जल्द अज जल्द शादी की ख्वाहिश थी। लेविन को महसूस हो रहा था कि उसकी खुशियों में हर कोई शरीक है और बेहद खुश है। लेविन एक सच्चा इंसान था, इसलिए उसने अपनी खामियां जिन डायरियों में लिखी थी वो किटी को दे दी। किटी ने मजहब से दूरी को तो इतना बुरा ख्याल नहीं किया, मगर माजी की चंद गलतियों को पढ़कर बेहद रोई, मगर बिलाखिर लेविन को माफ कर दिया। स्टीवा की दावत से फारिग होकर करीनिन को 2 टेलीग्राम मौसूल हुए। ये पढ़कर उसे सख्त गुस्सा आया कि जिस तरक्की की वो ख्वाहिश कर रहा था वो एक दूसरे आदमी को दे दी गई है, और दूसरे में आना ने लिखा था कि उसकी सेहत सख्त ख़राब है और माफ़ करते हुए उससे मुलाकात करे। उसने सोचा कि यह आना की नई साजिश है, मगर उससे मिलने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसके ख्यालात में आना की मौत आ रही थी, जिससे उसके तमाम मसाइल ख़त्म हो सकते थे। आना के साथ व्रॉन्स्की भी मौजूद था। आना समझ रही थी कि वह जल्द ही मर जाएगी। उसने करेनिन से माफ़ी मांगी और कहा कि वो व्रॉन्स्की को भी दिल से माफ़ कर दे। व्रॉन्स्की सोच रहा था कि वो एक तरफ कितना आला और बढ़तर है और दूसरी तरफ कितना जलील और कमतर है। उसने करेनिन के बारे में सोचा कि वो कितना बढ़तर और आला सोच का मालिक है कि मुझ जैसे घटिया इंसान को बर्दाश्त कर रहा है। उसने आना की बीमारी का सोचा और उसे शदीद मोहब्बत महसूस की, और ये मोहब्बत इससे शदीद हो गई थी कि शायद अब वो आना को कभी हासिल ना कर सके। चंद दिन तक वो मुसलसल इस बारे में सोचता रहा, और आखिरकार अपने सीने में गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। नौकर ने पिस्तौल की आवाज़ सुनी, मालिक को शदीद जख्मी देखा, और जल्द ही उसके रिश्तेदार और 3 डॉक्टर्स एक साथ वहां मौजूद थे। बीवी की खराब सेहत देखकर करीनिन अब उससे मोहब्बत से मिल रहा था। व्रॉन्स्की की खुदकशी की कोशिश की खबर भी उसे मिली, और उसने उसके लिए भी हमदर्दी महसूस की। आना की बच्ची की पैदाइश के बाद वो उसके साथ बहुत वक्त गुजारता, मगर महसूस करता कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी और खौफजदा भी थी। एक दिन आना ने उससे कहा कि व्रॉन्स्की शहर से जा रहा है, तो क्या मुझे खुदा हाफिज कहने जाना चाहिए? वो बताना चाहती थी कि उसने व्रॉन्स्की से मिलने से मना कर दिया है। करेनिन जवाब देता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करे। उसने देखा कि आना रो रही है और परेशान हुआ कि सूरत हाल को किस तरह काबू में लाया जा सकता है। स्टीवा को बताया गया कि आना बहुत परेशान है और अपने शोहर के साथ रहना नहीं चाहती। स्टीवा ने आना से मुलाकात की और कहा कि अगर अब वो करेनिन से नफरत करती है तो उसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो उससे उम्र में 20 साल बड़ा है। स्टीवा ने करेनिन से मिलने का इरादा किया, जो एक खत में आना को कह चुका था कि अगर वो चाहती है तो तलाक ले सकती है। अगरचे उसको मालूम था कि यह आसान काम नहीं है और इससे उसके बच्चे का मुस्तकबिल भी मुतासिर होगा, स्टीवा ने करेनिन को यकीन दिलाया कि वो हर तरह से उसकी मदद को तैयार है। वरोंस्की की खुदकशी की कोशिश कामयाब ना हुई थी और अब वो सेहत याब हो रहा था, अगरचे वो काफ़ी अरसा शदीद बीमार रहा था। सेहत याब होने के बाद उसे खबर मिली कि करेनिन ने आना को तलाक देने का फैसला कर लिया है, तो वो आना के घर उसे मिलने चला आया। उसे खुशी थी कि अब वो और आना मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, मगर अब आना सोच रही थी कि वो तलाक लेना नहीं बल्कि मरना चाहती थी, क्योंकि वो करेनिन के एहसानात के नीचे दबी हुई है। वरोंस्की ने एक नया ओहदा कबूल करने से इनकार करते हुए फौज से नौकरी छोड़ दी और आना के साथ मुल्क से बाहर चला गया। आना ने तलाक लिए बगैर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था और उसका असल शोहर करेनिन अब अपने बेटे के साथ अपने घर में अपनी बीवी के बगैर रह रहा था। www.server555.com